नमस्कार, मैं हूं मनोज।
और मैं हूं नेहा।
आज दिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबरों के साथ। नेहा, आपकी जो सबसे बड़ी खबर है कि कश्मीर में जो मुद्दा चल रहा है बुरहान वानी के मरने के बाद, जिस तरह से वहां पर जो उपद्रवी हैं, जिस तरह से वहां पर हिंसा की जा रही है, उसके बाद 4 दिवसीय यात्रा के बाद जैसे ही प्रधानमंत्री भारत लौटे और उन्होंने तुरंत अपने मंत्रियों को बुलाया जो कि केंद्र में और जो पूरी निगरानी रखे हुए थे इस पूरे मसले पर, उनसे उन्होंने चर्चा की और समीक्षा की और उसकी बाद उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए और कैसे कश्मीर को फिर से शांत और खुशहाल बनाया जाए। एक बड़ी पहल है क्योंकि आपको बताएं कि सुबह के ही वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि यहाँ पर भारत में पहुँचे थे और उसके बाद उन्होंने तुरंत इस बात की जानकारी अपने मंत्रियों तक पहुँचा दी कि वो तुरंत एक मीटिंग लेने वाले हैं और उसमें वो खुद उन सबसे राय मशवरा करेंगे और पूछेंगे कि हालात क्या हैं इस समय कश्मीर के। अब बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। विधानसभा चुनाव होने वाला है वहाँ पे 2017 में, लेकिन नेहा चुनाव से पहले काफ़ी उठापटक वहाँ पर नज़र आ रही है। अब जैसे कि एक सबसे बड़ी खबर वहाँ से आई है कि उत्तर प्रदेश में 2017 में विधानसभा चुनाव होना है नेहा, लेकिन उससे पहले निर्मल खत्री जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, उन्होंने वहाँ से रिजाइन दे दिया है। और आपको बताएं कि उन पर इस्तीफा देने का पहले से ही प्रेशर था, कहीं ना कहीं जो उनके काम करने की जो शैली थी वो प्रशांत और उनकी टीम को पसंद नहीं आ रही थी।
लेकिन किस तरह का प्रेशर था उन पे?
हाँ बिल्कुल, आपको बताएं नेहा जिस तरह से चुनाव का दौर है और ऐसे में कांग्रेस ने हर जगह मात खाई है। असम चुनाव की बात करें वहां पर भी उन्हें हार मिली ही। बिहार में उन्होंने एक महागठबंधन टीम के साथ जुड़े थे जहां पर उन्हें जीत तो मिली है, लेकिन कांग्रेस का जो वर्चस्व और जो वजूद था वो कहीं उभर कर सामने नहीं आ रहा था। और ऐसे में अब
तो क्या कांग्रेस को लग रहा था कि अगर वो रहेंगे तो कांग्रेस के लिए एक और हार बन सकते हैं वो?
नहीं, इस बार ऐसा तो कह सकते हैं कि जल्दबाजी होगा क्योंकि कांग्रेस की अपनी एक रणनीति है और वो उत्तर प्रदेश में एक बड़े बदलाव लाने की कोशिश कर रही थी। और आपको बताएं कि जिस तरह से अब माना जा रहा है कि कांग्रेस में जो अध्यक्ष नया चुना जाएगा कोई ब्राह्मण होगा, और आपको पता ही है उत्तर प्रदेश का जो चुनाव होता है वो जातिवाद पे होता है, जाति के नाम पर ही वोट वहां पर मिलते हैं। ऐसे में ब्राह्मण चेहरा वहां पर लाया जाएगा और उससे जो ब्राह्मण वोटर हैं उन्हें रिझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि जो चुनाव होने वाला है 2017 का वो काफ़ी रोचक होने वाला है। और ये इस खबर के बाद जिस तरह से निर्मल खत्री ने अपने पद से रिजाइन दे दिया है उसके बाद कांग्रेस को एक बड़ा झटका वहाँ पर लगा है। फिर से हम एक बार दौर करते हैं जम्मू कश्मीर की तरफ नेहा। जम्मू कश्मीर में अब तक जो मरने वालों की संख्या हो गई है 32 है, जिसमें से एक पुलिसकर्मी भी है। तकरीबन 1500 के लगभग ऐसे लोग हैं जो घायल हैं, अस्पताल में इलाज करा रहे हैं। पूरी तरह से पूरे राज्यों में कह सकते हैं कि कर्फ्यू लगाया गया है, किसी को भी बाहर निकलने की अनुमति नहीं है और इंटरनेट की जो सेवाएं हैं, जो सोशल मीडिया से एक दूसरे से जो कनेक्ट होते जुड़े रहते थे, उसे पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पुलिस को मुस्तैद किया गया है और तमाम जो हिंसक घटना है उसे रोकने के लिए हर तरह की कोशिश बरती जा रही है। और इसी मामले पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक बैठक की थी और समीक्षा भी किया उसका कि आखिर इससे कैसे निपटा जाए। नया अब राजनीति की खबरों से हटते हैं और चलते हैं स्पोर्ट्स की तरफ। अगर स्पोर्ट्स की बात करें तो मैच सबसे बड़ा लोकप्रिय खेल है भारत में और वेस्टइंडीज और भारत का मैच होने वाला है। और ऐसे में अब वेस्टइंडीज की जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है भारत के साथ भिड़ने के लिए और भारत की भी जो टीम है वो पूरी तरह से तैयार है भिड़ने के लिए। तो अब सबकी नज़रें ये है कि जिस तरह से T20 का हमने मैच देखा और जिस तरह से लगातार भारत का प्रदर्शन है क्रिकेट में, उससे काफ़ी उम्मीदें कर रहे हैं लोग कि जो मैच होने वाला है वेस्टइंडीज और भारत के बीच में काफ़ी बेहतर होगा और उसमें भारत ही विजय होगी। ये टेस्ट मैच है और इसमें भारत अपने परचम लहरा के ही वहाँ से लौटेगा। एक और क्रिकेट की खबर है विराट कोहली से जुड़ा हुआ। विराट कोहली से आजकल चेतेश्वर पुजारा के जो पिताजी हैं वो काफ़ी नाराज़ हैं और उनसे उनकी जो रणनीति है उसके पर वो सवाल उठा रहे हैं। लेकिन हमेशा से देखा गया है कि विराट कोहली की जो रणनीति होती काफ़ी सफल मानी जाती है। एक अच्छे कप्तान के तौर पर उभर कर आए, एक अच्छे बैट्समैन हैं और उन्होंने जिस तरह से अपने खेल का प्रदर्शन किया है उसके बाद कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि विराट की जो रणनीति होती है वो अक्सर कामयाब होती है। ऐसे में अब चेतेश्वर पुजारा के जो पिताजी हैं वो नाराज़ हैं, लेकिन उनकी नाराज़गी को जल्द ही दूर करने की भी बात की जा रही है। और उनकी जो बात है वो साफ तौर पर यही कहना है कि अभ्यास मैच में जो बल्लेबाज को रिटायर और आउट होने के से क्या मतलब होता है और क्यों किया जाता है, तो ये सवाल हैं। लेकिन साफ तौर पर कह सकते हैं कि थोड़े बहुत तो खबरें आती रहती हैं, लेकिन अब देखते हैं दोनों विराट कोहली कैसे उन्हें मनाते हैं और कैसा रहेगा भारत का प्रदर्शन,
देखते हैं। जाहिर सी बात है, मुझे तो विराट कोहली पे पूरा भरोसा है, अच्छा ही होगा।
बिल्कुल नेहा, स्पोर्ट्स की बात हो गई, अब आते हैं हम एंटरटेनमेंट की खबरों की तरफ। क्या है बॉलीवुड की खबर?
जी मनोज, एंटरटेनमेंट की बात हो रही है तो मैं आज भी सलमान खान की सुल्तान से ही खबर की शुरुआत करूंगी। सलमान खान की सुल्तान जो है वो बॉक्स ऑफिस पर बहुत धमाल मचा रही है, रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस कर रही है, सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, पाकिस्तान में, यूएई में, यूके में, दुनिया भर में सुल्तान का जलवा छा गया है। सुल्तान ने संडे तक की अगर मैं आपको बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट बताऊं तो हिंदुस्तान में कितना बिजनेस किया था, तो मैंने आपको बताया था 180 नेट है, करीब 250 ग्रॉस कमाई की है। और पूरे वर्ल्ड की बात करें तो इंटरनेशनल बिजनेस और डोमेस्टिक बिजनेस लेके सुल्तान करीब 350 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है। जरा सोचिए, पाँच दिन में सुल्तान ने 350 करोड़ कमा लिए। कई फिल्में होती है जो उनका लाइफ टाइम का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है इतना नहीं होता है, लेकिन 5 दिन में सलमान की सुल्तान ने कमाई है। फिल्म की दिलचस्प बात ये भी है कि जब से फिल्म रिलीज हुई है 6 जुलाई से, डोमेस्टिक कलेक्शन इसका 30 करोड़ के ऊपर ही जा रहा है। जरा सोचिए, एवरी डे 30-35 करोड़ फिल्म कमा रही है, जो बहुत बड़ी बात है। ये ना केवल सलमान की अब तक की सबसे बड़ी फिल्म है, ये हिंदुस्तान की कई बड़ी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इनफैक्ट यशराज बैनर ने जो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई है उनके लिए भी ये सब सुल्तान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है ये अब तक का सबसे बड़ा वीकेंड कलेक्शन है।
नहीं, ये फिल्म मैंने भी देखा, सुल्तान बहुत
बहुत अच्छी है, और जाहिर सी बात है सलमान खान का भी जलवा है तो फिल्म अच्छा कमाएगी। चलिए दूसरी खबर की ओर बढ़ते हैं। दूसरी खबर यह है कि संजय लीला भंसाली की जो अगली फिल्म है पद्मावती, उसके लिए दीपिका पादुकोण को फाइनल कर लिया गया है। अभी तक इसकी ऑफिशियल स्टेटमेंट तो नहीं आई है, लेकिन जहां तक सूत्रों की माने तो दीपिका पादुकोण को इस फिल्म में साइन कर लिया गया है। रानी पद्मावती थी, उनका किरदार दीपिका इसमें निभाएंगी, और दीपिका पहले भी संजय लीला भंसाली के साथ फिल्म रामलीला में और बाजीराव मस्तानी में काम कर चुकी है। दीपिका और रणवीर और संजय लीला भंसाली जब भी साथ आते हैं धमाका जरूर करते हैं, तो इसमें भी रणवीर का कुछ रोल होगा, उम्मीद करते हैं।
बाजीराव मस्तानी की बात जैसे आपने किया, पद्मावती की बात करें,
जी जी,
एक ऐतिहासिक रोल निभाने में जो कह सकते हैं कि दीपिका का जो कैरेक्टर था उसे काफी सराहा गया था, तो शायद ये भी वजह हो सकती है कि संजय लीला भंसाली उनसे आगे रखना चाहते हैं।
जी मनोज, मैं आपको बताऊं, जो हिस्ट्री होती है, हिस्ट्री जानने के लिए आज के लोग बहुत ज्यादा उत्सुक होते, क्योंकि बहुत लोगों को हिस्ट्री पता नहीं है कि हिंदुस्तान की हिस्ट्री क्या थी, कई महान लोग थे उनके बारे में जब हम बड़े पर्दे पे देखते हैं। फॉर एग्जांपल आप जोधा अकबर भी ले लो, तो इस तरह की फिल्में, बाजीराव मस्तानी, जोधा अकबर, इन्हें देखने पर ना बड़े पर्दे पर बहुत मज़ा आता है। और शायद और दीपिका उस रोल में सूट भी होती हैं उस लुक में, तो शायद संजय लीला भंसाली एक बार फिर एक ब्लॉकबस्टर देने के लिए तैयार है दीपिका के साथ।
बिल्कुल।
खैर, तीसरी खबर ये है कि सुशांत सिंह राजपूत जो MS धोनी के बायोपिक में काम कर रहे हैं, उनकी और उनकी गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे के पैचअप की खबरें आ रही है। जैसे कि ये साल शुरुआत में काफ़ी बुरा रहा, बहुत ब्रेकअप्स हुए, उसमें सुशांत और अंकिता का भी एक नाम था। दोनों का सालों से रिश्ता है, सालों से दोनों TV सीरियल पवित्र रिश्ता से मिले थे, सालों रिश्ता चला, लिव इन में थे, लेकिन फिर दोनों का ब्रेकअप हो गया। कहा यह भी जा रहा था कि अंकिता लोखंडे जो है वो बहुत पॉजिटिव टाइप की गर्लफ्रेंड है, वो हर बात में, जैसे कि बॉयफ्रेंड में हमेशा पीछे पीछे रहना, बहुत पॉजिटिव रहना, बहुत ज़्यादा केयरिंग रहना, शायद इस टाइप की थी। और सुशांत अभी शादी करने के लिए रेडी नहीं थे और अंकिता शादी करना चाहती थी। दूसरी इन दोनों के ब्रेकअप की वजह ये भी हो रही थी कि कृति सनन से बहुत करीब हो रहे थे सुशांत सिंह राजपूत, और यही वजह थी जो दोनों का ब्रेकअप हो गया था। लेकिन अब खबर ये आई है कि सुशांत अंकिता को वापस अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं और वो बहुत कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, तो हो सकता है, अभी तक कन्फर्म तो नहीं है लेकिन जहाँ तक सूत्रों की माने तो ये वापस से एक साथ आ जाएंगे। अगर आ गए तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो इस अच्छी खबर के साथ हम हमारी न्यूज़ की दी एंड करते हैं। नमस्कार।
नमस्कार।